नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता की उम्मीदों से युद्ध बढ़ने की आशंकाएं कम होने के कारण एशियाई व्यापार में वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्ने ने विशेष चुनाव जीतकर बहुमत वाली सरकार बनाई। टेक्सास के एक व्यक्ति पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के घर पर हत्या के प्रयास का आरोप। अब समाचार विस्तार से। भारत में ईरान के राजदूत डॉ मोहम्मद फताली ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकारों से बात करते हुए डॉ फताली ने इस कठिन समय में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। ईरान के राजदूत ने कहा कि भारत और ईरान के हित समान हैं और आगे भी दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे।
Our high-ranking officials believe that
हमारे उच्च स्तरीय अधिकारियों का मानना है कि ईरान और भारत के तौर पर हमारे हित साझा हैं। इस कठिन समय में भी हमारे संबंध अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा से भविष्य में भी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने श्री पजेशकियन से दो बार बात की है। हमारा मानना है कि ईरान और भारत दोनों ही अपने हित और आस्था साझा करते हैं।
पाकिस्तान में पिछले सप्ताह हुई शांतिवार्ता के विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही अमरीकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। ये नाकाबंदी कल शाम 7:30 बजे से प्रभावी हो गई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि ईरान से बाहर जाने वाले जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकते हैं, हालांकि उन्हें बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति और संचार जांच का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सेना ने चेतावनी दी है कि ईरान के बंदरगाहों पर बिना अनुमति के प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका जा सकता है, उनका मार्ग बदला जा सकता है या उन्हें कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान के बंदरगाहों पर वर्तमान में मौजूद तटस्थ जहाजों को भी निकलने के लिए सीमित समय दिया गया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने नाकाबंदी जारी रहने पर अन्य प्रमुख क्षेत्रीय बंदरगाहों और समुद्री यातायात मार्गों को बाधित करने की धमकी दी है। एक रिपोर्ट।
होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक कच्चे तेल के लगभग पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इसमें किसी प्रकार की रुकावट से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में संकट उत्पन्न हो जाता है। ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ईरान को बातचीत की और वापस लाने और साथ ही बड़े पैमाने पर संघर्ष के जोखिमों को सीमित करने का प्रयास करता प्रतीत होता है। हालांकि सीमित नौसैनिक तैनाती में भी जोखिम है। क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से ईरान की जवाबी कार्रवाई या अन्य समुद्री परिवहन मार्गों में व्यवधान की आशंका भी है। तेल की कीमतों में पहले ही इसका असर दिखाई दे रहा है और नाकाबंदी के घंटों में वैश्विक बाजार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी के हिस्से के रूप में मध्य पूर्व में 15 नौसैनिक जहाज तैनात किए हैं। इनमें विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और 11 विध्वंसक जहाज शामिल हैं। ये जहाज वर्तमान में पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं और अभियान में सीधे तौर पर भाग ले सकते हैं। एक रिपोर्ट।
इसमें यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस और यूएसएस रशमोर के साथ साथ अन्य जहाज भी हैं। इन जहाजों को महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचने के लिए स्वेज नहर से गुजरना होगा। यह कदम पाकिस्तान में हुई विफल वार्ता के बाद उठाया गया है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव का समाधान नहीं हो पाया था। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी का आदेश देते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने चाहिए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान 2 सप्ताह के युद्ध विराम की समाप्ति तक किसी समझौते पर सहमत नहीं होता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान से समृद्ध यूरेनियम निकालना चाहता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों से युद्ध की आशंका कम होने के बाद एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 2.2% गिरकर 97.20 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि अमरीकी बाजार में तेल की कीमत 2.2% कम होकर लगभग 96.90 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। पिछले सप्ताह ईरान अमेरिका के बीच हुई वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शिपमेंट पर रोक लगाने के आदेश जारी किया, जिसके बाद कल तेल की कीमत 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। एशियाई शेयर बाजारों में भी मामूली तेजी देखी गई। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण अब तक हुए नुकसान की भरपाई करते हुए आज अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। S&P 500 सूचकांक में 1% की वृद्धि हुई और ये फरवरी के अंत में अमेरिका तथा इसराइल द्वारा ईरान पर हमले से पहले के स्तर पर लौट आया। ये इस वर्ष की शुरुआत में सर्वकालिक उच्च स्तर से केवल 1.3% नीचे है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उपचुनावों में जीत हासिल करके बहुमत वाली सरकार बना ली है। इससे लिबरल पार्टी को अन्य दलों पर निर्भर हुए बिना कानून पारित करने के लिए पर्याप्त सीटें मिल गई हैं। नवीनतम मतदान में कनाडा वासियों ने संसद की 3 रिक्त सीटें भर दी हैं। इन जीतों के साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी सहित विपक्ष के 5 सदस्यों के दल बदल ने लिबरल पार्टी को बहुमत की सीमा पार करने में मदद की। परिणाम स्वरूप कार्नी की सरकार 2029 तक सत्ता में बनी रह सकती है। श्री कार्नी ने पिछले साल जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया था। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव के बीच कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका में अधिकारियों ने टेक्सास के एक व्यक्ति पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के सैन फ्रांसिस्को स्थित घर और कंपनी के मुख्यालय को निशाना बनाकर आगजनी करने का आरोप लगाया है। सैन फ्रांसिस्को के जिला अटॉर्नी के अनुसार डेनियल मोरेनो गामा पर ऑल्टमैन के घर और ओपन एआई कार्यालय में आग लगाने का प्रयास करने का आरोप है। उसके पास से केरोसिन और लाइटर जैसे ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। आरोपी पर अब हत्या के प्रयास के 2 आरोप और विस्फोटक और संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित 9 अन्य संघीय आरोप लगाए गए हैं। FBI ने टेक्सास में भी इस संबंध में छापेमारी की। अधिकारियों का कहना है कि उसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विरोध करने वाले लेख थे, जिनमें AI के बारे में चरमपंथी बयान और अधिकारियों तथा निवेशकों की सूचियां शामिल थीं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में निर्मित युद्धपोत से नए मिसाइल परीक्षणों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वे अपने देश के परमाणु हथियारों का विस्तार जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट।
नए मिसाइल परीक्षणों में क्रूज मिसाइलें और जहाज रोधी मिसाइलें शामिल थीं। मिसाइलें लंबे समय तक हवा में रहीं और अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। किम ने चोय ह्योन के विकास को अपनी सेना की परिचालन क्षमता और पूर्वव्यापी हमले की क्षमताओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। किम ने वर्ष 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ असफल वार्ता के बाद अमरीका के साथ बातचीत बंद कर दी थी। उन्होंने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा शत्रु राष्ट्र बताया और कहा कि जब तक अमरीका अपना रवैया नहीं बदलता वे बातचीत शुरू नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर हाल के वर्षों में रूस किम की विदेश नीति सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
मुंबई के बांद्रा में 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को नीदरलैंड्स यूरोप भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में नृत्य निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और वैश्विक विशेषज्ञ टिकाऊ परिवहन समाधान पर चर्चा करेंगे। भारत में नीदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि ये आयोजन भारत और यूरोप के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने साइकिल चलाने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, पैदल यात्रियों के अनुकूल योजना बनाने और एकीकृत परिवहन प्रणालियों के महत्व पर बल दिया। सम्मेलन में भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए पैदल चलने, साइकिल चलाने और एकीकृत गतिशीलता समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीदों से युद्ध बढ़ने की आशंकाएं कम होने के कारण एशियाई व्यापार में वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने विशेष चुनाव जीतकर बहुमत वाली सरकार बना ली है और टेक्सास के एक व्यक्ति पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के घर पर हत्या के प्रयास का आरोप। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।